ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिके। भोक्वं करोति वाचालं पंगुलं गयति गिरिं सत्कृपातमो वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्रुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपकदामजं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथमृतं तं सजीवं साधितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्तदिशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेव वैष्णवेव नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्मादकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि विश्ववानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिय। जयतां सुरतपङ्गो मम मन्दिरमतिर्गति मत्सर्वसपदाम्बोज श्रीराधामदरमाण। दीपद्विन्दारण्यकल्पद्रुमाधव श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्थ श्री श्रीराधाशील गोविन्ददेवे पृष्ठालभे सेवमान स्मरामि। सीमानरासरसारम्भिवंशिवटतटस्थित कर्षणाभेनुसुनिर्गोपी गोपीराधसि अस्तु न। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमो। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सदितो गौडदये पुष्पवन्तौ चैत्र सन्दौतमनुदौ। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तत वृंदावन धाय परमानंद वर्धनम कालिंदी जल कलोल संगे मारुत सेवितम। नाना पुत्र लता वृद वृक्ष सनेश मंडितम कूटी सूर्य समावासम विमुक्त सट तरंग के। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में आप सभी भक्त बिंद से मैं कृपा रचना करता हूं और आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक नंबर 8। एतेतां सम्प्रतीक्षते स्मरन्तो वैशसं तव सम्परेतमया कोटे सिन्धान्त तुस्थिता मना एव एतेतां सम्प्रतीक्षते परंता वैशसं तव संपरेतामयं कोटे सिदंतंतु सितामन्यवः एतेतां सम्प्रकीर्त्यैते स्मरन्तं वैशसं तव संपरेता मया कोटे सिंधंतो स्थित मान बहा प्रतीक्षते तव संपरेत मया कोटे स्मरन्त वैशसं तव संपरेतामयं कोटे सिदन्तत्तु स्थितमानव माताएं संप्रतीक्षन्ते स्मरन्त वैशसंस्तव परेतकुटे सिन्धं सिन्धन्तो स्थितमन्यव एतेतां संप्रतीक्षते स्मरन्त वैशसंस्तव संपरेतामया कोटे सिदन्तु चितमन्यव शब्दार्थ एते ए सब त्वाम तुम्हारे संप्रक्षेत्यते प्रतिज्ञा करते रहे हैं स्मरन्त स्मरण करते हुए वैषमम पीड़ा तब तुम्हारी संपरेतम मृत्यु की पश्चात अया लोहे के उटे सिंगों से छिंदंती छेदेंगे उतित जागृत मन्नव क्रोध अनुवाद। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघात का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारी शरीर को लोहे के अपने सिंगों से बेद डालेंगे। कृपया दोहराइए, ये सारे पशु तुम्हारी मरने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोध पूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सिंगों से बेद डालेंगे। तात्पर्य, नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन वैरसत का ध्यान यज्ञ में होने वाले अत्यधिक पशु बलि के अत्याचार की ओर आकर्षित करना था। शास्त्र का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में नए चतुर उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रु को मारते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के लिए यह आवश्यक है वह हत्यारे के इसी जीवन में ही दंडित करे, जिससे अपने अपराध के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट भोगना ना पड़े। उसी आधार पर नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे कि उसके द्वारा जग में जितनी पशुओं का वध हुआ वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतिज्ञा कर रहा है। नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहा है। नारद मुनि राजा को विश्वास दिखला रहा है कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे जग में थोड़ी से भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता, फलत यज्ञ करने वाले मनुष्य को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति के हत्यारा के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बोचड़ खाने में पशु का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी है, तो इस वध के लिए संबंधित जो व्यक्ति पशु वध किया क्या देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसकी मांस को खरीदता है, जो उसकी मांस को पकाता है और जो खाता है, ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान उसी की ओर आकृष्ट करना चाहते थे, इस प्रकार जग में भी पशु को प्रोत्साहन दिया जाता है। कि वेद में जब पशु बलि का विधान है, ये बड़े बड़े मुनि ऋषि लोग भी किया करते थे, तो उसका मूल उद्देश्य क्या होता था? यहां प्रभुपाद ने ये तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि उसको मनुष्य शरीर प्राप्त होता था। लेकिन आजकल जमाना में आप देखते हैं कि कोई हजार कसाई खाना खुला रखा हुआ है और हर दिन नित्य प्रति करोड़ों जो जानवर का वध हो जाता है, क्योंकि ये शास्त्र का विधान नहीं है। एक तो शास्त्र में ये वर्णन है कर्म कांड ज्ञान कांड, ये दो विभाग है, और जो अलग है उपासन कांड भी है। लेकिन एक कर्म कांड का विधान अनुसार पशु को यदि बलि दिया जाता है तो उसका पुनर्जन्म फिर आर परिवर्तन हो जाता है। और प्रभुपाद उल्लेख करते हैं क्या, मैं क्षत्रिय को भी तो लड़ना पड़ता है, वो शास्त्र का विधि अनुसार है। अब महाभारत में जो विभस युद्ध हुआ था उसमें हम सुने हैं और पढ़े होंगे आप लोग कि भगवान समक्ष में जिन लोगों को युद्ध करते हुए लड़ते हुए शरीर छोड़ दिए, ये उच्चतर लोक को प्राप्त हुआ, खास करके सूर्य चंद्र लोक को लिखा हुआ है, और क्षत्रिय उचित जिन लोग लड़ाई किया है वो लोग स्वर्ग गए। महाभारत में ये भी वर्णन आता है जब युधिष्ठिर महाराज स्वशरीर में स्वर्ग को पधारे तो वहां देखे कि अपना परिवार कोई भी सदस्य वहां पर नहीं थे, अपना परिवार सदस्य मतलब जो पंच पांडव वहां उपस्थित नहीं थे, और वो वहां अपना ताऊ का जो बेटा लोग सब वहां पर थे, तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इसे स्पष्ट पता मिलता है कि जो 100 भाई थे दुर्योधन का, लोग क्षत्रिय उचित लड़ाई किए थे, इसीलिए उनको शरीर छन्ना बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। और पंच पांडव का जो अन्य भाई थे उन लोग या क्षत्रिय युद्ध लड़ाई नहीं किए थे, उन लोग किए थे। लेकिन इसमें फर्क है कि भगवान का आदेश अनुसार उन लोग लड़ाई किए थे, सभी को बराबर अधिकार होना था। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि आगे पीछे उन लोगों को स्वर्ग में पधारे, जो कि बद्रिका क्षेत्र में जो व्यास गुंफा है उसका निकट ही एक ब्यार और भीमपुल है। अब लोग कितना भक्त लोग देखे हैं भीमपुल, तो वहां पर कितना बड़ा पत्थर है देखिए, क्योंकि पंच पांडव उसको लांग के जाना पड़ा, तब भीम ने पत्थर वहां रख दिए, उसका सहारा लेके उन्होंने फिर स्वर्ग पधार गए। लेकिन आज हम देखते हैं कोई कंसाई खाना है और अपना बिना कंसाई खाना घर में भी खल के रखे, क्योंकि नित्य प्रति इस बस पशु को बध किया जाता है। क्यों? क्या आत्मेंद्रिया, आत्मेंद्रिया प्रतिबंधा तारे बलि काम, किसने इंद्रिया प्रतिबंधा धरे प्रेमना। लेकिन यहां पर जो हो पशु बध हो रहा है, आजकल जमाने में कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं, आ उन लोग को कई स्वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा है और उन लोगों को कई शरीर प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? ये शास्त्र का निर्देश है नहीं हो रहा है, तो इन लोगों को कहां प्राप्त हो रहा है? अब ये प्राचीन वर्षत का यज्ञ का अनुसार आप देखते हैं कि नारद मुनि अपना दिव्य साधना बढ़ तप बढ़ से ये सब दर्शन कराए उन, क्योंकि एक कर्म कांड में है राजा पूरा फंसे हुए हैं। आज शास्त्र का भी एक कहना है कि ज्ञान कांड कर्म कांड सकली विशेर भान अमृत बलिया जेबा खाए नाना जुनी सदा फेरे कदर जब बखण करे तार जीव अधपत्य जाए। ये कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है? विष का भांड का सदृश है। जैसे हलाहल विष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ, किसका हिम्मत नहीं हुआ कि इसको पान कर दे, अंतिम में भोले बाबा का शरण में जाना पड़ा और भोले बाबा भी आए आ दया परवश उन्होंने ऐसे पान के गला में ही उसको धारण कर ली। लेकिन एक कर्मकांड जो है ये विष का भांड सदृश है। जैसे पुतना अपना कालकूट विष बाजार भर के आया था भगवान को मानने के लिए, लेकिन भगवान अपना अचिंत्य शक्ति से उसको नाम निशाना ही मिटा दिया, उसको उद्धार कर दिए। लेकिन हाँ हम कोई इंसान यदि जर थोड़ा ले ले तो हमारा दशा क्या होगा? साथ साथ राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए है एक कर्म कांड जो है ये विष का भांड सदृश है, ये अपना आत्महत्या का बराबर है। इसीलिए नारद मुनि बतला रहा है आप जिस पशु को आप बड़ी दे रहा है लोग आप देखिए ऊपर से तुमको दर्शन कर रहा है देख रहा है, ये समय को प्रतिज्ञा कर रहा है कि आप कब शरीर छोड़ोगे और शरीर छोड़ने के बाद उन लोग अपना सिंह से अपना जो हथियार से आपको हत्या करेंगे। तो मनुस्मृति में भी ये मांस शब्द का इसे अर्थ किया जाता है कि मां मतलब हमको, मांस मतलब उन, अभी जिन लोग को हम हत्या कर रहा है उन लोग फिर अगले जन्म में माँ हमको हत्या करेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक कली युग के लिए पांच प्रकार का यज्ञ बंद कर दिए, अश्वमेधम गवाळंबम संन्यास पळपैतृकम देववर्णम सतापति कड़ु पंच विवर्जय। अश्वमेध यज्ञ, अशु को जो यज्ञ में डाल दिया था बड़ी दिया जाता था उनको भी पुनर नया शरीर प्राप्त होता था, और गोमेद यज्ञ में भी ऐसे ही उनको जब यज्ञ में डाल दिया जाता था और ऋतुजों का इतना पावर था कि उन्होंने उनको पुनर्जन्म देने का क्षमता दान किया करते थे। असुमय तब गवाळंबम संन्यास, अब संन्यास का बारे में तो जानते हैं कि संन्यास को एक जगह में गोदान तक रहना चाहिए, ये सुखदेव गोस्वामी और उन्होंने प्रदर्शन किए कि संन्यास का नियम कैसे होता है। तो आजकल जमाना का हिसाब है हमारे संस्था में जो संन्यास लेते हैं उनको कम से कम 3 दिन का, लेकिन हमारे संस्था में और थोड़ा डिस्काउंट भी है क्योंकि कई मंदिर में कई प्रोग्राम चलता रहता है, इसलिए 10 दिन 15 दिन भी सन्यासी लोग रहने का अधिकार है। और आज एक प्रसंग है, इसी प्रसंग से और एक वैष्णव का बारे में भी बतलाने के लिए धर्मात्मा प्रभु बताए थे, जो कि वृंदावन दास ठाकुर, जो कि महान कव्य इस चैतन्य भागवत को प्रण किए थे। उनका बारे में इसे खास करके कोई शास्त्र में उन्होंने अपना जीवन के उन्होंने उल्लेख किए नहीं, और अपना माता का बारे में उन्होंने उल्लेख किया नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो वो आत्म प्रकाश व महाप्रकाश लीला किए, तो महाप्रकाश का लीला का जब मुख्य स्थान कौन से था, श्रीवासंगन, जो कि अभिन्न रासस्थली माना जाता है। भगवान कृष्ण ने ये द्वापर युग अंत में ये भौम वृंदावन में ब्रह्मा का एक दिन में आकर ये गोपियां का माध्यम से ये रास नृत्य का प्रणन किए, अरे भक्त लोग का साथ रास नृत्य किए। लेकिन एक कली युग में ये चैतन्य महाप्रभु रूप में ये नदिया नवदी में अवतीर्ण हुए जगन्नाथ मिश्र एवं सती माता का पुत्र रूप में, एवं इस हरिनाम संकीर्तन माध्यम से उन्होंने ये रास रस का आस्वादन किए। तो कोई बार इसे रात्रि में ये हरिनाम करते थे, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बतलाते हैं कि तेसावर्णम दिशा कृष्णम संग पंकद पार्षदम जगई संकीर्तने प्राय जजंती ही सुबदेश। जो कृष्ण अकृष्ण वर्ण में आए, मतलब भगवान कृष्ण का रंग कैसे काला है, तो काला का जो हो अपोजिट वा और विपत्ति रीत जो कलर होता है क्या गोरा, तो चैतन्य महाप्रभु ये राधा भाव को अंगीकार करके अरे भक्त भाव में आए, किसके लिए ना अपनी आचार्य धर्म सिखामु सवारे, चार प्रकार का भाव व रस को आस्वादन करके ये हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किए। जदा जदा ही धर्मस्य ग्राणी भवर्ति भारत अभुत्तान मधर्मसम तदात्मानम सर्जामम। ये तो गौण कारण है, ये जुग धर्म प्रवतरना व हरिनाम प्रचार करना ये एक गौण कारण है जुग धर्म है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपना आत्म प्रकाश अभी तक किए नहीं थे। तो एक दिन जो कि श्रीवास श्रीनिधि श्रीपति श्रीराम इन लोग का साथ भगवान ने हरिनाम कीर्तन किया करते थे, तो उसी समय का एक बात है कि हिंदू लोग अपना पूजा पाठ ठीक ढंग से कर नहीं पा रहे थे, एवं अपना जो वैष्णव संप्रदाय का लगभग लुप्त प्राय था, तो बार बार मुसलमान लोग आक्रमण का बहाना से ये हिंदू लोग का आरो पूजा पाठ बंद किया करते थे। तो एक दिन श्रीवास ने बोला कि मैं जाके राजा को बतलाऊंगा, तुम्हारी हिम्मत है तो घोड़े और बैल और जितना भी पशुआ है उन लोग आप नचा सकते हो। तो ठीक चैतन्य महाप्रभु उसी समय आए, बोले है कि श्रीनिवास आप धीरज रखो, ये समय अभी हुआ नहीं, जब समय आएगा उसका बदला हम ले सकते हैं। कुछ समय के बाद ये चैतन्य महाप्रभु का साथ जो वार्तालाप हो रहा था श्रीवास आचार्य का, उसी समय जो श्रीवास का एक भतीजी था उसका नाम था क्या नारायणी, तो नारायणी मात्र 4 साल का बच्ची थे, तो उसी समय उन्होंने वहां पर आए। तो चैतन्य महाप्रभु अपना आत्म प्रकाश किए उस समय, उन्होंने बोल उठे कि अच्छा नारायणी तुम किसना किसना बोल के रोने लगो, तो नारायणी ने रोने लगे, 4 साल का बच्ची क्यों किया जानता है, ये चैतन्य महाप्रभु का और आत्म प्रकाश का लीला। तो नारायणी ने रोने लगा किसने किसने बोलते हो, तो उसी समय आसपास में जितना ये मृत जबन थे उन्होंने आश्चर्यचकित हुए, क्या बात है ये इतना छोटे से बच्ची अभी भगवान का नाम लेके रोने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का बाद जब उन्होंने भोजन किए, भोजन का बाद जब अवशिष्ट उचिष्ट था, सभी उचिष्ट प्रसाद नारायण को प्रदान किए। इसे वर्णन मिलता है कि भगवान को जो पान वगैरह भी दिए थे वो भी सब प्रदान किए। तो ये उचिष्ट पाने का बाद उन्होंने और भगवान का नाम गान में इतना रुचि भाव उत्पन्न हो, उनका अस्तसात्विक विकार हुआ। जैसे हम लोग आते हैं, रोमांच कंपास हो तरंग भाजो बंदे गुरु श्री चरणारविंद, ये पता चलता है कि उनको सात्विक भाव हुआ। जो हम प्रसाद लेते हैं और प्रसाद सेवा करते हैं, भगवत प्रसाद और भक्त का भक्त अवशिष्ट लेते हैं, तो हमारे जो शरीर में रोमांच कंपास नहीं हो रहा है, तो पता चलता है कि हमारे शरीर में अभी तक और पाप भरा हुआ है, क्योंकि हम ठीक ढंग से भगवान का नाम कीर्तन नहीं कर रहा है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत उल्लेख है, भजन है मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। ये भजन में जितना भी अंग है सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये नवविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनं विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। एक एक अंग को महाजन लोग पालन करके ये भगवत प्राप्ति हो गया। और हम नवदा भक्ति का आचरण कर रहा है, ये संदेह है कि हम भगवत प्राप्ति होगा कि नहीं, क्योंकि भजन रे मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण नाम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। ये भगवान को देने में ये नाम इतना शक्ति धरता, क्योंकि अभिन्न तो नाम नाम ही नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरण नो काल एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव मिद्रुषम यहां जनिना अनुराग। हमें अनुराग ही नहीं है। अब एक एक दो दिन पहले आप यहां सुने होंगे, वृंदावन चंद्र प्रभु बता रहे थे, सबसे बड़ा साधन बड़ा तपस्या है बटके सुलोमना जप करना, ये ध्यान रखना। कितना भक्त का होता होगा आप लोग को ध्यान है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम रहिले पाए प्रेम धन। तो हम लोग को अपराध मुक्त होना पड़ेगा, अपराध मुक्त होने से होगा नहीं। इसलिए भक्ति मनु ठाकुर बोले कि बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इसलिए ध्यान देने का बात है कि हम लोग को अपराध मुक्त, जो दस धाम अपराध है, नाम अपराध है, सेवा अपराध है। शास्त्र में यह भी वर्णन आता है कि सेवा अपराध आप भगवान का नाम से ही तब सूत्र से सुकर से आ सकते हो, लेकिन वैष्णव अपराध से बचना बहुत खतरनाक है। यदि अज्ञात में वैष्णव अपराध हो गया तो आपका जो ध्यान टूट जाएगा। उसका उदाहरण क्या है, जो सनातन गोस्वामी अपना ध्यान में मग्न थे, लेकिन पास में एक लंगड़ा जा रहा था, वो लीला किया था ना, श्रीमती राधारानी फूल तुलने जा रहा है, फूल बहुत ऊंचा टहनिया में है, तो हाथ नहीं जा रहा है। तब भगवान ऊपर से वो टहनिया को दबा दिए, जब श्रीमती राधारानी फूल को पकड़ लिए तो भगवान कृष्ण और टेनिया को ऊपर छोड़ दिए, तो श्रीमती राधारानी पर झूलने लगे ऊपर में, तो ए लीला दर्शन करके उन्होंने पर हंसने लगे। महात्मा जी जो हो वो हंसने लगे और दूसरा महात्मा उधर से जा रहे थे, तो दूसरा महात्मा सोचे कि हमको बैंक कर रहा है, क्योंकि वो टेढ़ा बंका था महात्मा जी, हमारे स्वरूप को देखकर उन्हें हंस रहा है। अब सुनेंगे अष्ट बकरा, आठ जगह में उनका टेढ़ा है, इसीलिए उसका नाम अष्टवक्र है। ऐसे शास्त्र में वर्णन है कि वो ऐसे है, आठ जगह में टेढ़ा बंका नहीं थे, एक अप्सरा ने उनसे आशा किए थे कि रथी क्रीड़ा के लिए, तो उन्होंने बतलाये देखो हमारे शरीर अभी जराग्रस्त है, वृद्ध हो चुका हूं, कई जवान से आप रति कामना कर सकते हो, तो अब सराने बोला तुम हमारे मनोवासना हमारा चरित्रार्थ नहीं किया, इसलिए मैं तुमको साफ देता हूं कि तुम्हारा शरीर टड़ाबंका हो जाए। तो कितना खतरनाक है, देखिए अपना मनोकामना पूरी नहीं होने से ये अभिशाप दिया जाता है। तो वृंदावन दास ठाकुर का पिता का बारे में बताया जाता है कि वैकुंठ नाम से है और कुमार हट में उन्होंने वास किया करते थे, और ये नारायणी का साथ उनका विवाह हो गया था, वो 5 महीना लगभग हुआ था, उनका शरीर देहांत हो गया, वो फिर भगवत धाम को पधार गए। तो उसी समय वृंदावन दास ठाकुर अपना माता का साथ बहुत कष्ट से काला जापन कर क्या करते थे, उसका उसी समय ये मामगाछी आप जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा करते हैं जो कि सारंग मुरारी का श्रीपाठ से कुछ दूर में है, वहां श्रीपाठ में और एक ही संत रहते थे जो कि वासुदेव दत्त, वहां पर उन्होंने अपना भगवान का चैतन्य महाप्रभु का सेवा का परिपाटी को अपनाए थे। तो कार्यक्रम में उन्होंने का भी देहांत हो गया, जब देहांत हो गया उन्होंने फिर नारायणी को यह सेवा भार दिया गया था, और वृंदावन दास ठाकुर उस समय बहुत छोटे ही थे, लेकिन उनका बुद्धिमत्ता और आचार व्यवहार इस साधारण बेटा का लड़का का जैसे नहीं होता था, क्योंकि कवि कर्ण पुण्य ने अपना गौरव गण देश दीपिका में लिखते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर है वो स्वयं व्यासदेव है, हमारे जैसे बद्धदशा को देख के ये वेद उपनिषद और रामायण महाभारत को जैसे वेद व्यास ने प्रणय किए थे, ऐसे ही ये वृंदावन दास ठाकुर ये चैतन्य महाप्रभु का जो दिव्य काव्य को उन्होंने प्रणय किए थे, जो कि बीच में चैतन्य मंगल नाम से भी नामित किया जाता है। परवर्ती समय में ये चैतन्य मंगल ही ये चैतन्य भागवत में परिणत हुआ, उसका 3 भाग में चैतन्य महाप्रभु का आज दिव्य लीला 3 भाग में उन्होंने आदि मध्य और अंत लीला माध्यम से उन्होंने प्रणन किए, एवं चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न जो नित्यानंद प्रभु जो प्रेम में मतवाला होकर प्रेम प्रदान किया करते थे, उसी समय उन्होंने देनुड में भी आए थे। जब आए थे तो वृंदावन दास ठाकुर उस समय बड़े हो चुके थे और समस्त शास्त्र में भी उन्होंने पारंगत हो गए थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनको लोग बतलाए कि एक हरितकी लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु के लिए ये वृंदावन दास ठाकुर एक हरितकी लेके आए थे, और चैतन्य महाप्रभु का अभिन्न जो नित्यानंद प्रभु ने ये वृंदावन दास ठाकुर बतलाए कि आप यहीं पर रहो, तब से उन्होंने ये मामगाछी नाम से जो नामित कहा जाता है ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा का अंतर्गत जो गुद्रम द्वीप ना मदोद्रम द्वीप में है, तो उसी जगह में ही उन्होंने ये अंतिम समय तक उन्होंने भजन किए, और भजन करने का बाद आज जो तिथि है उसमें शास्त्र में जो वर्णन है 1441 और शकाब्द में उनका आविर्भाव हुआ था, और 1500 शकाब्द में उनका ये भगवत यह लीला का उन्होंने त्याग किए थे, लगभग उन्होंने 70 साल तक ये जगत में और भगवत तत्व को प्रचार किए, एवं विभिन्न जगह में उन्होंने ये भगवत भक्ति का भी प्रचार किए, और समय समय अनुसार उन्होंने ये भक्त लोग का साथ हरिनाम भी किया करते थे।
तो उनका जो दिव्य तिरुवान तिथि में हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम भी ऐसे दिव्य ग्रंथ तो रचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य ग्रंथ को अध्ययन कर सकते हैं। कितना भक्त का पास चैतन्य भागवत है, एक दो तीन, सभी लोग का पास होना चाहिए। लगभग आप आजकल तो हिंदी में उसका हो चुका है। तो इसे ही उनका जीवन चरित्र में विशेष कुछ लीला नहीं है, तो जो भी है मैं जो सुना था उसको मैं आप लोग का समक्ष में प्रकट किया, उसमें कोई भूल त्रुटि है तो हमको माफ करना। तो जो लंबे प्रसंग आप सुनते आ रहा है राजा पुरंजन के गुण का वर्णन, तो आप उनको फिर आगे जाके वरिष्ठ भक्त से श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, वृंदावन दा ठाकुर की। हाँ जी, हाँ हाँ, इसमें वृंदावन ठाकुर का, वृंदावन दास ठाकुर का जो जीवनी में भी बता देता है कि उन्होंने इतना विरक्त तो हो गए थे कि उन्होंने सन्यासी भी लिए नहीं और सन्यासी का बारे में उन्होंने आरोप विरोध भी किए थे, क्योंकि सन्यास का जो नियम कानून है उसका एक कलि युग में उसी हिसाब से सन्यास लेना बहुत और कठोर है। क्योंकि एक पुराण में वर्णन है कई जी संन्यास धर्म आप ग्रहण कर लिया, उन्हें जो पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको पिसा जुनी रखा हुआ है उनके लिए। क्योंकि अभी जैसे मैं बतला रहा था कि संन्यास का और मर्यादा भी सत्यन महाप्रभु दिखाए, उन्होंने कोई ही माताओं का स्पर्श किया उनको दूर से ही उन्होंने प्रणाम किया करते थे। और छोटा हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के लिए थोड़ा से चावल बदला के लिए थे, उसमें दिखाए कि सन्यास को कैसे कठोर नियम होना चाहिए। लेकिन ये भक्ति सन्यास का हिस्सा में प्रचार के लिए मात्र ये दिया गया है काय मन वाक्य में, इसलिए त्रिदंडी सन्यास के लिए हमारा वो ये जो गौड़ीय वैष्णव लोग धारण करते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कर्मकांडी जो सन्यास लोग है लोग एक दंड धारण करते हैं और वो क्या संबोधन करते हैं मालूम है आपको, दंड धारण मात्रण नर नारायण भवे। वो जब सन्यास हो जाता है उन लोग मान्यता है कि वो नारायण हो गया, लेकिन हमारे ये जो वैष्णव संप्रदाय में इसे दावी नहीं किया जाता है और कई भी करते नहीं, इसलिए काय मन वाक्य में जिन्होंने पालन करते हैं उनको सन्यास दिया जाता है। एक कर्मकांडी सन्यास का मना है, इसमें अंतर है। अभी हमारे सन्यासी लोग देखिए माता लोग को सब वार्तालाप भी करते हैं, क्यों कि प्रचार के लिए, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु दिखा दिए कि सन्यास कैसे होना चाहिए, दूर से प्रणाम करना मना कर दिया। हरिदास ठाकुर को वो एक थोड़ा से चावल मांग के आए, बोले तुम वैरागी है यार प्रकृति से संभाषण करते हो, इसलिए कर्मकांड सन्यास भक्ति सन्यास में अंतर है। और चैतन्य महाप्रभु इसलिए सन्यास ग्रहण किए थे कि हमारे जैसे बधात्मा भगवान शंकर चक्र गदा पद्म लेके आ जाए, बाबा बांसुरी लेके खड़े हो जाए, कि चैतन्य महाप्रभु में भी खड़े हो जाए हम उसको मान्यता नहीं देंगे, अपराध हो जाएगा, इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए। सन्यास बोधे मरे करीबे नमस्कार, क्योंकि समाज में हमारे जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है उसे ब्राह्मणों को मस्तक माना जाता है और मान्यता अभी है, अभी भी साधु सन्यास को हम मर्यादा सहकार सम्मान देते हैं। ये सम्मान देने से हमारे अपराध नहीं होगा, अपराध से मुक्त हो जाए। हरे कृष्ण।